आजान लंबित बुजोतन कावदा तो संकीर्तने कितरो कमलाय दाक्षो विश्वंबरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद स्वभावितो गौरव कृष्ण दो चित्तो छंदो तमो दो पंच तत्वात्मक कृष्ण भक्त रूप स्वरूप का भक्तावतार भक्तार्थ नमामि भक्तिशक्तिकम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमान स्वरूप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे जो भक्त हैं जो माताएं वो तिलक नहीं लगा के आई यहाँ पर, तो आप सबको कम से कम प्रोग्राम में तिलक लगा के आना चाहिए। सो प्लीज भगवान को अच्छा लगेगा जरा तिलक लगा। एक डिवोटी जो भी करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। आप भी अच्छे लगोगे, ऐसा नहीं है कि आप खराब लगोगे, आप भी अच्छे लगोगे। सो कल भगवान वामदेव जी का प्राकट्य था, भगवान वामदेव प्रकट हुए थे और भगवान वामदेव के बारे में भागवतम के आठवें स्कंद में वर्णन है। और परीक्षित महाराज ने पूछा शुभदेव गोस्वामी जी का, प्लीज बताओ कि भगवान वामन ने कब क्यों किस कारण से प्रकट हुए, क्या किया उन्होंने, है ना। सो शुभदेव गोस्वामी ने कहा आपको बहुत बधाई कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा कि मुझे मौका मिला कि मैं आपको कृष्ण कथा सुना सकूं, मैं आपको भगवान के बारे में बता सकूं, भगवान की महिमा के बारे में बता सकूं। तो बात शुरू हुई थी कि देवता और असुर आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, है ना, हमेशा लड़ते रहते थे, कभी किसी का प्रणाम भारी, कभी किसी का प्रणाम भारी। तो एक एक बार युद्ध हुआ, तो युद्ध होने से क्या हुआ कि जो असुरों ने देवताओं को मार दिया, एक बार देवताओं ने असुरों को मार दिया, तो ऐसे फाइट चल रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि जो राजा जो इंद्र है, वो इंद्र के हाथी का नाम क्या है, ऐरावत, है ना। तो अपने हाथी पे बैठ के जा रहे थे, तो सामने से दुर्वासा मुनि आ रहे थे, है ना। तो दुर्वासा मुनि देख के बहुत खुश हो गए, मेरे को देवराज इंद्र। तो उन्होंने क्या किया, अपने गले से हार उतार के इंद्र को दे दिया। अगर कोई वैष्णव सीनियर वैष्णव अगर हार दे, अपना कोई उच्चिष्ट वस्तु दे, तो उसको बहुत आदर से स्वीकार करना चाहिए, है ना। लेकिन लेकिन इंद्र अपने उसमें बहुत घमंड में था कि मैंने असुरों को हरा रखा है, मैं एक छत्र राज्य कर रहा हूँ। तो इंद्र ने क्या किया, वो हार लेके और अपने हाथी की सूंड में डाल दिया। अब हाथी तो हाथी है नहीं, हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड से हार लेके नीचे फेंक दिया जमीन पे और अपने पैरों से लौंग दिया उसको। दुर्वासा मुनि को कैसा लगेगा, दिमाग खराब होगा। उन्होंने कहा ये तूने अच्छा नहीं किया ठाकुर। तो श्राप दे दिया कि जिस ऐश्वर्य का तुझे बहुत अभिमान है वो तेरे से छीन जाए। बस ये कहने की देर थी, बलि महाराज आए, उसके आक्रमण किया, सब कुछ छीन छान कर उसको आक्रमण कर दिया उसको। बड़ी लड़ाई वगैरह हुई, तो भगा दिया उसको साम्राज्य से उसको, है ना। एक बार बल्कि इससे पहले तो क्या हुआ था कि इंद्र ने बलि महाराज को मार दिया था, एक्चुअली जान से मार दिया था, है ना। और उसके कई साथी थे जिसमें प्रमुख था नमुची। नमुची की एक खासियत थी, नमुची राक्षस का नाम सुना है आप में से किसी ने? नहीं सुना? गब्बर सिंह का, गब्बर सिंह का नाम सबने सुना होगा। तो नमुची को एक बहुत विशेष वरदान प्राप्त था। विशेष वरदान क्या प्राप्त था कि उसको ना तो सूखे हथियार से मारा जा सकता है, ना गीले हथियार से मारा जा सकता है। तो इंद्र ने क्या किया, अपना वज्र फेंका उसके ऊपर, क्या चल रही तो मर गया, वज्र वापस उल्टा लौट के आ गया। तो इंद्र ने कहा यार मरा क्यों नहीं, बड़ी परेशानी हुई इंद्र को। तो भविष्यवाणी हुई कि भैया इसको वरदान प्राप्त है, तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये ना तो गीले हथियार से मरेगा ना सूखे से मरेगा। तो इंद्र ने कहा क्या करूं भैया, हथियार या तो गीला होगा या सूखा होगा। तो फिर आपस में उन्होंने विचार विमर्श किया, तो फिर क्या निष्कर्ष निकाला? हाँ आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उन्होंने क्या उसका वो तोड़ निकाला, है ना। बताऊं आपको, है तो आप तिलक तो लगाते नहीं हो, क्यों होता? तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कौन सा हथियार है जो ना गीला है ना सूखा है, ऐसी कौन सी वस्तु है? अरे आप, मैं कह रहा हूँ यार सोच ही नहीं सकते आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी चीज निकाली कि जो ना गीली है और ना सूखी है, वो होती है झाग। झाग ना आप कह सकते हो गीली है और ना आप कह सकते हो सूखी है, हाथ पे लो झाग, हाँ तो गीला पर लगेगा, निचोड़ोगे पानी नहीं निकलेगा झाग में से, झाग से पानी थोड़ा होता, फूट जाएगा काम खत्म। दिमाग है देवताओं के अंदर बृहस्पति में। तो उन्होंने क्या किया, झाग का फोम का हथियार बनाया, उससे नमुची को मार दिया। आप सोचो कि वो झाग की एक बॉल बनाई होगी, से मारी नमुची चारों खाने चले, जहां पे वज्र बेअसर हो गया, झाग से मार दिया उसको, नहीं? तो लगे मारने जो देवता है वो राक्षसों को लेफ्ट राइट सेंटर मार रहे थे, असुर भाग रहे थे, पकड़ पकड़ के मार रहे थे। तो सारे जो नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बोला यार थोड़ा सा तो दया का धर्म दिखाओ, बंद करो लड़ाई, खत्म हो गया, हार गए हो। तो जो असुरों के साथी हैं उन्होंने क्या किया, उसकी लाश को उठा के बलि महाराज ने लाश को उठा के ले गए गुरु के पास। उनके गुरु कौन है? शुक्राचार्य, है ना। तो गुरु के पास ले गए, उन्होंने संजीवनी मंत्र फूका, जिंदा हो गया बलि महाराज जी भी। तो बलि महाराज ने अपने गुरु की बहुत सेवा की, तो सेवा से खुश हो गए शुक्राचार्य। उन्होंने कहा चलो तुम्हें एक यज्ञ करवा देता हूँ, तुमने खुश कर लिया, यज्ञ करवा देता हूँ। उन्होंने यज्ञ करवाया, विश्वजीत यज्ञ करवा दिया, और यज्ञ से उनको कई हथियार मिले। अब बारी किसकी थी? असुरों की। अब वापस चढ़ाई कर दी, इतने में इंद्र ने ये दुर्वासा मुनि को नाराज कर दिया इस दौरान, है ना। तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया कि तेरा सारा ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही बोला दरवाजे पे दस्तखत हो गई, ठक ठक ठक, कौन है? बलि महाराज। और घबरा गए, उसका तेज देख के बलि महाराज का इंद्र के होश उड़ गए, से भागवत में लिखा है। और फटाफट भाग के गए बृहस्पति के पास, बचाओ रक्षा करो। बृहस्पति ने कहा कुछ नहीं हो सकता, भाग जाओ छुप जाओ सारे। सारे चुप गए। जब चुप गए तो छुपने के बाद में फिर उसमें बलि महाराज ने सारे कब्जा कर लिया सारी जगह पे, है ना। अब कब्जा कर लिया तो अब जब कब्जा हो गया, बलि महाराज ने सूर्य अलग से एक असुर को सूर्य की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया, एक असुर को चंद्र की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया और इंद्र की पोस्ट पे खुद बैठ गया। अगर कोई बोलेगा इंद्राय स्वाहा तो उसका फल इंद्र को नहीं जा रहा था, अभी उसका फल किसको जा रहा था, वो सूख के कांटा हो गए। जब खाने को नहीं मिलेगा तो नेचुरली बंदा सूख के कांटा हो जाएगा। सूर्य देवता परेशान, चंद्र देवता परेशान, सारे परेशान हो गए बेसिकली नक्षत्र में संक्षेप में। और जो देवताओं की माँ है उसका नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप, तो वो परेशान हुए तो उन्होंने फिर व्रत किए। अदिति ने व्रत करने के बाद भगवान को प्रसन्न किया, उन्होंने बोला प्लीज आके रक्षा कीजिए। तो अदिति की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान पावन देव प्रकट हुए, है ना। और जैसा भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में जब देवकी जी के हृदय से प्रकट हुए थे, तो ऐसे छोटे बालक के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, पूरे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, शंकर चक्र गदा पद्मा और पूरा पीतांबर सारे साजो सामान के साथ प्रकट हुए थे। तो जैसे देवकी वसुदेव ने उनकी आराधना की और उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज आप जो है अपना ये अलौकिक रूप आप इसको छुपा लीजिए और एक बालक के रूप में आ जाइए, तो कृष्ण ने कहा फाइन ओके। तो कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में उनके सामने आ गए, ऐसे ही वामन देव ने भी किया। जब भगवान वामन देव प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए पूरे ऐश्वर्य के साथ, तो कश्यप मुनि और अदिति ने उनकी आराधना की। तो वामन देव ने कहा टेंशन मत लो मैं सब ठीक कर दूंगा। तो वामन देव जो है उन्होंने फौरन एक छोटे बालक का रूप बना लिया, ब्राह्मण बालक का रूप। सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए वहां पर, ब्रह्मा जी शिव जी उनकी पत्नियां वरुण देव इत्यादि जितने सूर्य देव चंद्र देव सारे इकट्ठे हो गए और सबने अब भगवान के सामने आए थे, तो कुछ ना कुछ उन्होंने भगवान को गिफ्ट दिया है ना। जैसे आप सब लोग आते हो ना तो आप सब भगवान के सामने आए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आना चाहिए। चाहे आप भगवान को एक रुपया आप भेंट चढ़ाओ, आप चाहे एक दर्जन केले लेके आओ, चाहे एक केला लेके आओ, कुछ मतलब खाली हाथ भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए। हम किसी भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति के पास जाएंगे तो खाली हाथ थोड़े ना चले जाएंगे, जाते हैं कभी खाली हाथ किसी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास जाएंगे, है ना। तो हमें समझना चाहिए कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, नहीं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम आए तो हमारे पास कुछ भेंट होनी चाहिए, है ना। वो भेंट जरूरी नहीं कि सामान है या कैश है, जरूरी नहीं है। आप कृष्ण के सामने आओ तो आप उनको कोई वचन भी भेंट कर सकते हो कि मैं आपकी प्रसन्नता से आज से ये काम करूंगा, कृष्ण एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, है ना। भगवान को पैसे से लगाव थोड़ी ना है कि यार पैसे लाया नहीं लाया, है ना। कृष्ण को पैसे से लगाव नहीं है। तो अगर हम भगवान के सामने आए हम बोलें कि ओके फाइन कल से मैं भगवान मैं कल से सुबह अभी तक मैं 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, कल से मैं 5 बजे उठूंगी, है ना, हम बोल सकते हैं। अब एकदम से तो आप 4 बजे अगर कोई 6 बजे उठ रहा है तो अच्छा नहीं है 6 बजे उठना, लेकिन अगर कोई 6 बजे उठ रहा है अब उसको हम बोले कि आप इमिजिएटली 4 बजे उठना शुरू हो जाओ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आप बोलो कि ठीक है मैं अभी 6 बजे की जगह 5 बजे उठना शुरू कर देना, फिर जब आप अभ्यास हो जाएगा फिर आप बोलो ओके फाइन आज से हम 4 बजे उठा लेंगे, है ना, बात फिट हो गई, काम खत्म हो गया, नहीं। सो हम जब भी भगवान के सामने जाएं हमें भगवान को कुछ देना चाहिए, है ना। अगर बाय चांस आप, अगर ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन बाय चांस आप ना पैसा लेके आए ना कुछ फल वस्तु लेके आए, वायदा करने के लिए भी आप कुछ तैयार नहीं हो कि जी हम कल से ये काम करेंगे, ये भी नहीं कर सकते, तो आप जो हमारे वैष्णवाचार्य हैं उनके कुछ भजन याद करो, है ना, जिसमें भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है ना। तो जैसे भक्तिविनोद ठाकुर हैं उनके बहुत सारे भजन उन्होंने लिखे हैं, तो आप कोई भजन नरोत्तम दास ठाकुर है, नहीं, वासु घोष है, और वासु घोष ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मन धरिता दे, कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता, मैं अपना शरीर कैसे धारण करता, के मन धरिता दे, राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना देखे, कि जो श्रीमती राधा रानी की महिमा है कि कितनी महान है श्रीमती राधा रानी, और उनकी जो प्रेम की सीमा है वो इस जगत में कैसे कोई बता पाता, कुछ चांस नहीं था, है ना। तो इस तरह के भजन आप याद कर सकते हो, है ना, और भगवान के सामने आओगे तो आप भगवान को वो भजन आप सुना सकते हो। तो भगवान को वो भजन सुनाएंगे तो भगवान को क्यों अच्छा लगेगा, क्वेश्चन ये है कि भगवान को क्यों अच्छा लगेगा। अगर हम सपोज वासु घोष का भजन सुनाते हैं हम, तो भगवान को वासु घोष का स्मरण आ जाएगा, है ना, भगवान को एकदम वासु घोष याद आ जाएंगे, और जैसे ही भगवान को वासु घोष याद आएंगे भगवान बहुत खुश हो जाएंगे अपने भक्तों को याद करके, है ना। आपने कभी भक्तिविनोद ठाकुर का कोई अगर आप भजन सुनाएंगे भगवान के सामने तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे आपसे कि आपने भगवान की हेल्प की भक्तिविनोद ठाकुर को याद करने के लिए, है ना। जैसे कल हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव था, हाँ तिरुभाव है, तो कल हम भगवान के सामने हरिदास ठाकुर की अगर महिमा गाएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, है ना, इन्होंने ये मुझे मेरे भक्त के बारे भक्त को याद दिला ले, तो बहुत खुश हो जाएंगे कृष्ण। तो अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमें वैष्णवाचार्यों के भजन याद करने चाहिए और भगवान के सामने हमें उनको दोहराना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको ट्यून आती है, आप सिंपली बोल दें ट्यून आती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिंपली आप बोल देंगे तो कृष्ण एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम भगवान के सामने जाए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, है ना, ऐसे खाली हाथ मतलब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास जाना अच्छी बात नहीं है, है ना। वो कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही करते रहे। सो सारे देवी देवताओं ने कृष्ण को वामन देव को बहुत सारी तरह तरह की वस्तुएं भेंट दी, किसी ने दंड भेंट दिया, चंद्रदेव ने दंड भेंट दिया, है ना, क्योंकि वो जंगलों का राजा है चंद्रदेव, नहीं, और किसी ने कमंडलू भेंट दिया, किसी ने मूंछ की वस्त्र उनको भेंट किए, किसी ने जनेऊ भेंट किया। सो सभी लोगों ने कुछ कुछ भेंट किए, और जब उनको कमंडलू मिला तो पहली भिक्षा पार्वती देवी ने दी उनको वामन देव जी को। तो वामन देव जी ने कहा अच्छा मैं जिस काम के लिए आया हूँ अब मैं वो काम करने जा रहा हूँ। तो वामन देव जी वहाँ से निकले और गुजरात क्षेत्र है, वहाँ पे नर्मदा नदी है, बहुत ही पवित्र मानी जाती है ना। तो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर एक जगह है, उसका नाम है भृगु कच्छ जगह। तो वहाँ भृगु कच्छ है ना, भृगुपक्ष जगह है वहां पर बलि महाराज जो है यज्ञ कर रहे थे। तो वो यज्ञ कर रहे थे, वहां पे पहुंचे जब वामन देव, तो वामन देव का सौंदर्य देखकर, उनकी रूप माधुरी देखकर सारे वहां पर लोग अचंभित हो गए और खड़े हो गए भगवान वामन देव को सम्मान देने के लिए, है। और बलि महाराज विशेष रूप से बहुत प्रसन्न हुए उनको देखकर, और बलि महाराज ने कहा मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा, आप एक बहुत सुंदर ब्राह्मण के पुत्र हो, तो आप मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दूं, आप मेरे से कुछ मांग लो। और जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो उनका पूरा परिवार भी वहां पर था, है ना, पूरा परिवार वहां पर था, उनकी पत्नी, उनकी बहन, हाँ सब लोग वहां पर मौजूद थे, है ना। तो बलि महाराज, तो जब बलि महाराज ने बोला कि आप कुछ मांगो, तो वामनदेव ने कहा ठीक है मुझे आप 3 पद भूमि दे दीजिए। बलि महाराज ने कहा 3 पद भूमि फाइन, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन 3 पद भूमि क्या होती है, तुम बच्चे हो ना अभी, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम सोचो तो सही किसके सामने खड़े हो। कोई बड़ी चीज मांगो, कोई द्वीप मांग लो, ढेर सारी गायें मांग लो, बहुत सारे गांव मांग लो, मतलब कुछ तो, मतलब लगे कि यार मैं कुछ दे रहा हूं और तुम कुछ लेके जा रहे हो, ऐसी चीज मांगो कि मतलब मेरे से मांगने का मतलब है कि आजीवन किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें, इतना मांगो, मैं बहुत विशाल मिलने वाला हूं। कितना घमंड था बलि महाराज को। लोग ये देख लेते हैं कि दान करने की प्रवृत्ति है, वो ये नहीं देखते कि दान करने की प्रवृत्ति के पीछे चेतना क्या है, है ना। जैसे लोग कर्ण कर्ण को दान वीर कर्ण, दान देने वालों की बात आती है तो कर्ण का नाम सामने आ जाता है, है ना। हालांकि अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्ण बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था, वो दान दे रहा था अपना यश बनाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान नहीं दे रहा था, है ना, अपना यश बढ़ा रहा था दान देने से, है ना। अगर उसमें भक्ति होती तो कृष्ण गए थे द्रौपदी को कुंती महारानी को लेकर, जब बिल्कुल युद्ध शुरू होने वाला था, एक दिन देखा था सारे इकट्ठे हो गए थे कुरुक्षेत्र में, तो कृष्ण कुंती महारानी को लेकर गए और उनको बोला देखो तुम्हें पता नहीं है लेकिन एक्चुअली में तुम पांडव हो, है ना, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, राजा राज पांडव करेंगे तो पांडवों में तुम राज करेगा, तुम करोगे, तुम बड़े भाई हो सबसे, आखिर कर्ण का जन्म युधिष्ठिर महाराज से भी पहले ही हुआ था, नहीं। कर्ण ने कहा मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं अपनी दोस्ती नहीं मांगूंगा, मैं अपनी दोस्ती नहीं मांगूंगा। कर्ण उसने भगवान के वचन से ज्यादा प्रधानता उसने ये संसारिक रिश्तों को दी, संसारिक दोस्ती को दी, इसीलिए मारा गया। लेकिन अर्जुन ने भगवान के कहने पर अपने गुरु पर भी बाण चलाया, लेकिन कोई व्यक्ति अर्जुन को दोष नहीं देता। युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण के कहने पर झूठ बोल दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को कोई दोष नहीं देता। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत का सरस्वती ठाकुर कहते हैं धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? धर्म भगवान की वाणी है। अगर भगवान कुछ करने के लिए कह रहे हैं फिर सही गलत नहीं सोचना चाहिए, भगवान ने जो कहा
जैसे कृष्ण ने भगवद गीता का संदेश दिया अर्जुन को और उनको बोला कि यथा इच्छसि तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो, मैं तुम्हें कोई जोर नहीं डालता। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन ने क्या बोला, करिष्ये वचन तवा, मैं वो करूंगा जो आप मुझे बताएंगे, है ना, जो आप मुझे बताएंगे मैं वो काम करूंगा, है ना। तो अगर हम, हमें देखने में कोई चीज बहुत अच्छी लग सकती है लेकिन अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल गलत हो सकती है, और कोई चीज हमें ऐसा लगता है गलत हो रहा है, लेकिन अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो हमें वही चीज सही दिखाई देगी। समझते हैं बात। और जब भगवान वामन देव गए बलि महाराज के यज्ञ स्थली में, तो उन्होंने बोला देखो आप कितने महान हो और आपके पिता कितने महान थे। बलि महाराज के पिता का नाम था विरोचन। इंद्र को डर लगता रहता था कि कभी भी आएंगे भगा देंगे मुझे, है ना, इंद्र की प्रॉब्लम है, डरता रहता है 24 घंटे, है ना। उसने कहा ये विरोचन मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत यज्ञ करता है, और विरोचन जो है विष्णु भक्त थे, है ना। तो एक ब्राह्मण का रूप बना के आए इंद्र और उन्होंने बोला भिक्षां देहि, तो विरोचन ने कहा पहचान लिया तुम्हें, तुम कौन हो, तो बोलो क्या मांगते हो। तो इंद्र ने सोचा अगर मैंने इसका सिर मांग लिया तो फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा, क्योंकि शुक्राचार्य बैठे हैं ना, जीवित कर देंगे तुरंत। अगर सिर मांग लिया तो फायदा नहीं होगा, उनको पता था सिर मांग लिया दे देंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे आप अपनी आयु दे दो। विरोचन ने कहा ठीक है अपनी आयु दे दो, काम करो। एक मिनट नहीं सोचा, है ना, एक मिनट नहीं सोचा। हम लोग क्या करते हैं, कई बार जोश में आके संकल्प कर लेते हैं कोई, फिर आधे घंटे एक घंटे बाद जब ठंडक, दिमाग ठंडा होता है, फिर बोलते हैं यार ये क्या बोलती है। नहीं, परसों हम लोग एक व्यक्ति के पास डोनेशन मांगने गए थे, तो हमने उसको सब कुछ बताया जगन्नाथ जी के बारे में। तो हमने बोला 51,000 रुपये हमें चाहिए, उसने कहा डन, 51,000। हमने बोला जाए, हमने बहुत उसको धन्यवाद दिया। फिर पूरी रात उसने सोचा उसके बारे में, सोचा होगा। फिर सुबह उसका फोन आ गया पावन दिखा दे तुमको। अरे बोला भैया बड़ा मुश्किल है। सो लेकिन विरोचन ने ऐसा नहीं किया। और वामन देव ने बोला, उन्होंने बोला आपके पिता कितने महान थे और आपके दादा बलि महाराज के दादा कौन है, प्रहलाद महाराज, है ना। अच्छा बलि महाराज के परदादा कौन है, वो ओके ओके फाइन ओके हिरण्यकश्यप। अच्छा बलि महाराज के पर दादा कौन है, पर दादा कौन है, पर दादी कौन है, है कश्यप मुनि और दिति। हिरण्यकश्यप की माँ का नाम दिति नहीं है। तो मैं पूछ सोच रहा आपसे, मेरे पूछने का मकसद यह है कि आपको जो चेन मैं बना रहा हूं आप भी अपने दिमाग में वो चेन बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। इसलिए पूछ लिया मैंने, है ना। तो उन्होंने कहा आपके दादा कितने महान थे, है ना, देखो, और आपके परदादा कितने महान थे कि विष्णु को ही मारने के लिए निकल पड़े, है ना, और विष्णु को सोचना पड़ा भाई क्या करूं, और तुम्हारे जो वो हिरण्याक्ष है वो कितना महान था, जब भगवान ने बड़ी उसको मेहनत मशक्कत करके मारा, ये वामन देव बोल रहे हैं, ये कितनी मेहनत मशक्कत करके मारा, नहीं तो इतने महान कुल के तुम वंशज हो, हाँ तो मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ। उन्होंने बोला मांगो क्या मांगते हो, एकदम भूल के कुप्पा हो मैं हूँ। उन्होंने बोला तीन पल जमीन, बोला तुम बेवकूफ हो, मतलब कुछ और मांग लो। तो उन्होंने बोला देखो अगर किसी व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो उसको पूरे संसार की धन दौलत दे दो संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना लेना चाहिए। और ईशोपनिषद में भी लिखा है ना, ईशोपनिषद में भी लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन प्रत्येन भुंजिता मा गृदा कस्य सिद्धनम, है ना, कि कस्य सिद्धनम मा गृदा, हड़प मत जाओ मा गृदा, अपने अधिकार में मत ले लो, क्यों जान लो कस्य सिद्धनम, क्यों किसका धन है ना। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा घर हमारा शरीर हमारा परिवार सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, हमारे बच्चे कृष्ण की संपत्ति है ना। इसलिए कई बार क्या होता है कि अगर माँ बाप डिवोटी भी होते हैं ना, अगर उनके बच्चे डिवोटी बन जाए तो बोलते हैं चलो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मुझे ब्रह्मचारी बनना है तो मम्मी कह रहे तेरा दिमाग खराब हो गया, ये माला दे मेरे को अपनी ये सब इसी का किया धरा है, तो टेंशन में आ जाते हैं उस समय माँ बाप की, है ना। तो लेकिन हमें याद रखना चाहिए कस्य सिद्धनम, कि हमारे जो घर परिवार संपत्ति बच्चे ये सब कृष्ण की संपत्ति है, हम लोग कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब कस्टोडियन को क्या बोलेंगे, हम लोग तो बेसिकली देखभाल करने वाले हैं, हम लोग स्वामी नहीं है। ममत्व की भावना नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। अरे एक इंग्लिश को वर्ड को दूसरे इंग्लिश के वर्ड से बता दिया तो क्या पॉइंट है तो उन्होंने कहा कि जो पॉइंट है कि कर्तव्य की भावना होनी चाहिए, ममत्व की भावना नहीं होनी चाहिए, निर्मम होना चाहिए। निर्मम का मतलब ये नहीं है कि अत्याचारी, निर्मम का मतलब है कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान की संपत्ति है ना, ये निर्मम शब्द का मतलब है। तो कान में पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार मेरे सामने बैठ के। सो शुक्राचार्य बीच में कूद पड़े, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कौन है। तो बलि महाराज ने कहा कौन है, तो उन्होंने कहा अरे विष्णु है भैया, ये अभी छोटे से दिख रहे हैं, अभी देखते ही देखते विराट रूप ले लेंगे और सब तुम्हारा संपत्ति है हड़प लेंगे ये, तो तुम ऐसा मत करो, अपने वचन से फिर जाओ, क्योंकि अगर शरीर धन संपत्ति नहीं होगी शरीर की रक्षा कैसे करोगे, अगर शरीर की रक्षा नहीं कर पाए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे कर पाओगे, है ना। शरीर होगा तो काम करोगे ना, तो शरीर की रक्षा के लिए मुकर जाओ अपने वचन से। तो बलि महाराज ने बोला कि सभी शास्त्र कह रहे हैं कि विष्णु को संतुष्ट करो, अब विष्णु सामने खड़े हैं, मेरे पास अवसर है उनको संतुष्ट करने का, तो मैं इससे कैसे मुकर जाऊं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपको रिजेक्ट करता हूं, लेकिन मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा भाड़ में जाऊंगा, तो उन्होंने जल मंगाया और आचमन लिया और संकल्प लिया, जैसे संकल्प लिया बलि महाराज ने वैसे ही वामदेव ने एकदम विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में ही पूरी पृथ्वी नाप दी, शरीर से पूरा आकाश कवर हो गया और भुजाओं से दिशाएं कवर हो गई सारी। और फिर उन्होंने दूसरा कदम बढ़ाया तो सारे जितने बाकी के ग्रह थे ब्रह्म लोक तक सारे नाप दिए, बल्कि ब्रह्म लोक नापने के बाद भी रुक नहीं रहे थे, विस्तार किए जा रहे थे वामन देव। तो उनका जो पैर का अंगूठा है वो भौतिक जो जगत है उसके ब्रह्मांड के आवरण से टकरा गया। जब आवरण से टकराया तो आवरण फट गया, जब आवरण फट गया तो गिरजा नदी का पानी भौतिक जगत में प्रवेश कर गया और वो जो पानी है उसको आप गंगा देवी के नाम से जानते हैं, है ना। और जब भगवान के अंगूठे से वो आवरण फटा, गंगा जी उसमें से निकल के आई, तो जो छेद था उसके पास क्या चीज थी उस समय? भगवान के चरण कमल थे ना, उसी से तो छेद हुआ था, उसी से छेद हुआ था ना। तो जैसे गंगा जी आई तो जो पानी निकल के आया वो तो पानी भगवान के चरण कमल का अभिषेक करना शुरू कर दिया। इसीलिए गंगा जी पवित्र मानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमल का अभिषेक किया, ठीक है ना। तो कई कल्प में अलग अलग तरह से गंगा जी आई हैं। एक जो वामन देव जी जब अवतरित हुए तो गंगा जी इस तरह से अवतरित हुई थी इस धराधाम पर लोक कल्याण के लिए, है ना। तो अब जब दो पग में सभी कुछ नाप लिया, अब तीसरा पैर कहां रखें? तो उन्होंने बोला यार तुम्हारा वचन तो झूठा हो गया, तुम्हारा वचन झूठा हो गया। तुमने कहा था तीन पग मेरे को जगा दोगे, तुम नहीं दे पाए, बांध दो इसको रस्सियों से। तो गरुड़ जी पास खड़े थे, उन्होंने फटाक से वरुण के पास से उनको रस्सियों से बांध दिया। और इसको सब लोग देख रहे थे, इसको सब लोग देख रहे थे, इसको जितने भी लोग देख रहे थे उसमें बलि महाराज की बहन भी देख रही थी, बलि महाराज की बहन भी देख रही थी। और एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा आज लग जाएगा, है ना। सो कोई टेंशन तो नहीं आप लोगों को? सो जब वामन देव आए थे यज्ञशाला में तो इतने सुंदर बालक को देख के बलि महाराज की बहन जो है बहुत ही आसक्त हो गई थी उन पर वात्सल्य भाव में। तो उन्होंने बोला कितना अच्छा बच्चा है, इसको मैं गोद में उठाऊं, प्यार करूं, इसको मैं स्तनपान कराऊंगी, ऐसा सोचा उसने। लेकिन देखते ही देखते पूरा दृश्य बदल गया, उनके भाई को उसी छोटे से बालक ने रस्सियों से बंधवा दिया। अब जो उनकी बहन है उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला कितना खराब बच्चा है, मेरा दिल करता है इसको मार दूं जहां से। तो दो इच्छाएं की बलि महाराज की बहन ने, पहली इच्छा क्या की थी? स्तनपान कराने की। और दूसरी इच्छा क्या की? जान से मार दूं। भगवान ने उनकी दोनों इच्छाएं पूरी की, अगले जन्म में वो पूजना बन के आई और उसने भगवान को स्तनपान भी कराया और मारने की कोशिश की, है ना। इसीलिए हमारे आचार्य और विशेष रूप से प्रभुपाद ने बार बार बोला है कि आप ध्यान से इच्छाएं किया करो, आप जो भी इच्छा करते हो भगवान उचित समय आने पर पूरी करते हैं, अगर आप गलत इच्छा करोगे भगवान पूरी कर देंगे इसको, है ना। इसीलिए अपने मन पे बहुत नियंत्रण होना चाहिए, गलत इच्छा नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है। खैर हम वापिस वामन देव जी के प्रसंग में, ये बात निकल आई तो मैंने आपको बता दिया। तो बलि महाराज ने कहा कि जब बलि महाराज से सब कुछ छिन गया, भौचक्के रह गए वो, अभी तक उनके अंदर अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा दान करता हूं, है ना। लेकिन जब सब कुछ छिन गया अभिमान गायब हो गया, उन्होंने भगवान की शरण ली। जब भगवान की शरण ली उन्होंने, तो कृष्ण कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तब ये न माम उपयान्ति ते, है ना, कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि देता हूं जिससे कि वो मेरे पास आ सके। बलि महाराज को तुरंत एक बात याद आ गई और बलि महाराज ने वामन देव को बोला कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, संपत्ति से ज्यादा महत्व संपत्ति के मालिक का होता है, आपने मेरी संपत्ति ली है, मैं अभी भी खड़ा हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखें। तो भगवान बहुत खुश हो गए, भगवान ने तीसरा पैर उनके सिर पर रखा और उनको आशीर्वाद दिया। हाँ, और भगवान क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर दिया तो भगवान उनके ऋणी हो गए, तो भगवान ने उनका ऋण चुकाने के लिए बलि महाराज को वामन देव ने बोला कि मैंने एक विश्वकर्मा से एक स्पेशल प्लैनेट बनवाया है सूतल, वहां का जो सुख सुविधा है वो इंद्र का जो लोक है स्वर्ग उससे भी ज्यादा है, तुम वहां जाकर रहो, और अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की तो मेरा सुदर्शन चक्र उसको छोड़ेगा नहीं। ये बोल दिया, फिर भी ऋणी महसूस कर रहे थे वामन देव अपने आप को, उन्होंने बोला मैं आपका ऋण नहीं चुका पा रहा हूं, मैं आपका द्वारपाल बनूंगा वहां पर जाकर। तो वामन देव सुतल लोक में जाकर बलि महाराज के द्वारपाल बन गए और उन्होंने बोला ये इंद्र का जब आयु खत्म होगी अगले इंद्र तुम बन जाओगे, जाकर द्वारपाल बन गए। जब वो वहां के द्वारपाल बन गए तो लक्ष्मी जी को टेंशन हो गई कि वहां चले गए मेरा काम कैसे चलेगा, तो लक्ष्मी जी गई, फिर उनको जाना पड़ा लक्ष्मी जी को बलि महाराज के पास और उनके उनसे भिक्षा मांगी। जब बलि महाराज ने वायदा कर दिया भिक्षा देने का, उन्होंने बोला प्लीज मेरा हस्बैंड मुझे वापस कर दे, तो बलि महाराज ने उनको रिक्वेस्ट किया भगवान वामन देव को कि आप प्लीज आप वापस जो है लक्ष्मी देवी जी के साथ निवास कीजिए। तो हम यहां पर देखते हैं कि बलि महाराज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली। बलि महाराज ने कहा कि आप देवताओं पर बहुत कृपा करते हो लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपने मुझ पर देवताओं से भी ज्यादा कृपा की है, मेरा धन संपत्ति छीन कर। और कृष्ण ने बोला भी है जिस पर मैं कृपा करता हूं मेरी कृपा का पहला लक्षण क्या होता है, उसका धन छीन लेता हूं, है ना। जैसा भगवान ने अवंती ब्राह्मण के साथ किया था, है ना, कभी मैं बोलूंगा वामन रूपा प्रभु को आपको अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं हमारे वामन रूपा प्रभु। सो कृष्ण जब भौतिक संपत्ति हर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत कमी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, कृष्ण उसकी पूर्ति कर देते हैं आध्यात्मिक धन के माध्यम से, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है कि ये भौतिक धन संपत्ति बिल्कुल बेकार है। चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं शिक्षाष्टकम में, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवदान भक्ति अहैकु की, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि हमें धन सुंदरी जमीन जायदाद इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें मोक्ष की अपेक्षा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने मोक्ष को भी ठुकरा दिया, कैसे ठुकरा दिया, उन्होंने बोला मम जन्मनी जन्मनीश्वर, मुझे अनेक जन्म दीजिए। जैसे ही उन्होंने बोला मुझे अनेक जन्म दीजिए, इसका मतलब उन्होंने मोक्ष को ठोकर मार दी। चैतन्य महाप्रभु बोला मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप प्लीज मेरे जो हृदय कमल है उसमें आप हमेशा मुझे दृष्टिगोचर होते हैं, है ना, मैं आपको हमेशा देखता रह सकता हूँ। भगवान के जितने भी भक्त हैं, जिन लोगों को भी भगवान ने बोला क्या मांगते हो, सबने यही बोला कि हम आपके दर्शन करते रह सके। जब चैतन्य महाप्रभु ने कोलावेचा श्रीधर को दर्शन दिए सप्त प्रहरिया लीला के दौरान, कोलावेचा श्रीधर बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके घर जाते थे, जो केले के पत्ते के दोने वगैरह होते थे, कुछ और सामान होता था, सब उठा के ले आते थे और बोलते थे मेरे खाते में लिख देना, अगर हिम्मत हो तो लेके दिखा देना पैसे, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य दिखाया श्रीवास आंगन में, एक बार दिखाया ऐश्वर्य, 21 घंटे तक सप्त प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, सप्त प्रहर का मतलब 21 घंटे चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की और चैतन्य महाप्रभु ने हरेक भक्त को बुलाया और उनको आशीर्वाद दिया, उनको बताया। कल हम इसके बारे में और सुबह चर्चा करेंगे पंजाबी बात में, चैतन्य महाप्रभु की सप्त प्रहर लीला के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने कोलावेचा श्रीधर को बुलाया और उनको बोला मांगो, क्या मांगते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा। तो कोलावेचा श्रीधर ने कहा मुझे उन निमाई पंडित का दर्शन सदैव होता रहे जो मेरे हाथ से सामान छीन कर ले जाते। कोलावेचा श्रीधर की, चैतन्य महाप्रभु की, ये भक्त का भाव होता है, ये भक्त का भाव होता है। तो बलि महाराज ने बोला कि आप देवताओं पे, लोग समझते हैं कि आप देवताओं पे अनुग्रह करते हो, एक्चुअली में आपने अनुग्रह किया है तो मुझ पर किया है। मैं धन दौलत पावर के पीछे भाग रहा था, लेकिन आपने मुझे बता दिया कि आपके चरण कमल के आश्रय से ज्यादा ऐश्वर्यवान और सुखद वस्तु कोई नहीं है ना। तो जो कृपा, और इंद्र महाराज ने एक्सेप्ट किया था इस बात को, एक्चुअली में नारद मुनि के सामने उन्होंने बोला था कि वास्तव में हालांकि ऐसा लगता है कि वामन देव ने मुझे स्वर्ग का राज्य ला कर दिया, लेकिन एक्चुअल जो कृपा है, वास्तविक कृपा भगवान ने बलि महाराज की, ठीक है। तो हम सबको इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भौतिक धन संपत्ति से ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए भगवान की सेवा में हम अपने शरीर को, अपने घर को, अपने परिवार को, धन संपत्ति को कैसे हम लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। और जितना हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान उतना ही हमें भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा।